বিভক্ত ছিল, অর্থাৎ প্রেমটা বিভক্ত, অপরে বিপরীত বিভক্ত। অর্থাৎ প্রীতি মানে সে প্রীতিকে দ্বারা গঠিত যে বস্তু সামনে প্রকট হতে হ্যাঁ, আর ওটা যে আবর্তন অর্থাৎ বিবর্তিত সেবা বিলাস সেবা, অর্থাৎ প্রতিমূর্তি রূপ ধারণ করতে হ্যাঁ, শব্দ কৌত চল রা থা ও বতারে বিপরীত বিবর্ত, অর্থাৎ সমুদ্র কি পানি নিচে কেউ যা রা হ্যাঁ, নদী কি পানি সমুদ্র মে, অব সমুদ্র সে যে পানি উপর আতা হ্যাঁ, সব নিচে কা পানি আর উপর কা পানি দোনো জব মিল জাতা হ্যাঁ, সময় ক্যা স্থিতি হতা হ্যাঁ, দোনো কিনারে গাঁও দেশ সব ডুবতা হ্যাঁ, সব হতা হ্যাঁ বাঘ, নেই তো পানি যদি এক তরফা ভেঙে যায় তো পানি কে কই চিন্তা নেই হ্যাঁ, কিন্তু অব কে আবার নিচে যা রা পানি ও উপর কে পানি আর যা রা নিচে সে পানি উপর আ রা দেশ দুনিয়া সব ডুবতা হ্যাঁ। এসে জব এক তরফা ভক্ত ভগবান কে লিয়ে পুকারতে হ্যাঁ, প্রীতি করতে হ্যাঁ, ভগবান কি সেবা করতে হ্যাঁ, তব তো ভক্ত ঠিকঠাক রয়েছে, ও কিছু ডিস্টার্ব নেই করতে। জব ভগবান ভি উস ভক্ত কে লিয়ে প্রীতি করনে লগ জাতে হ্যাঁ, আমাকে দেখো আবেগ উৎসাহ দৈন্য হ্যাঁ, এসব অবস্থা হতে উখনটা চারো তরফ মে দেশ গাঁও পাহাড় পর্বত নদী নালা কুচ বাঁকি নে সব বড় বড় পাহাড় দিচ্ছে যেতে ওর প্রীতি কে কারণ। इसलिए भगवान के प्रति भक्त के प्रति भगवान में है ये ठीक है, किंतु भगवान ने स्वीकार किया और भगवान भी अपने भक्त को प्यार करने लगे तब देखो क्या अवस्था उस समय सिद्ध तब बता रहे भाई रे वृंदावन जवायार होलना, बता रहे भाई वृंदावन जाना मेरा हुआ नहीं, अब संभव नहीं है, क्यों গোরা মুখ না দেখিয়া গোরা রূপ ধ্যাইয়া পথ ভুলি যাই অন্য দেশ, যেখানে হইতে ফিরি পুন যাই ধীরে ধীরে পুন আসি সে দেখি সে প্রদেশ, যা যাতে হ্যাঁ চল দিয়ে বৃন্দাবন কে লিয়ে, কিন্তু যা যাতে হ্যাঁ বহুত সুন্দর কে দর্শন তো হতা নি সব আমি লোক দেখ করকে উহা সে লোক কে চলে আসে कहाँ तक जितना गए उससे अधिक लुट के आ गए, लुट के आकर के क्या होते हैं क्या क्यों मैं जा रहा हूँ पूरी क्या कारण है जरूर दौड़ो, वो तो मुझसे प्रीति नहीं करते क्यों ऐसा होता है, महाप्रभु सबसे बोल रहे हैं जगदानंद नाराज होकर के वृंदावन के लिए चल दी, वो खुश नहीं हुए क्या किया जाए, वो चाहते हैं मुझे विचर भुक कर रहा है, मैं सन्यासी हूँ उनको ये ज्ञान नहीं, जो जगदानंद पंडित क्या सोचते अरे किस बात की सन्यासी स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर वो सन्यासी है कभी संभव नहीं, मैं उनके दुख देख नहीं सकता कैसे संभव है, श्रीमती राधारानी ब्रज की ब्रज देवियाँ किस प्रकार से कुंजर तैयारी करके किस प्रकार से सेवा करती थी, किस प्रकार से जसदा माँ सेवा करती, जसदा माँ कृष्ण गोचर में जाएंगे क्या बोल रहे, कृष्ण जब यहाँ आए मथुरा में तो कृष्ण रो रहे हैं छात्र में ऊपर उठकर बिल्कुल अटरे में चढ़ गए, चढ़ कर रो रहे हैं क्या कह रहे हैं, ओहो जाके जसदमा से कहना मैं मथुरा में आया क्योंकि इन लोगों ने अबद्ध करके रख दिया, अभी मैं कोई सुबोध करके बोलता नहीं कन्हैया तेरे गला पे सूख गया होगा, रात भर तेने पानी नहीं पिया कुछ खाया ना और तेरी छाती में और गला सब सूख गया थोड़ा मक्खन तो खा ले हैं, मेरा आँख कभी खुला नहीं मुंह धोया नहीं और जसदमा ने धीरे से मेरा होंठ को खोल के मक्खन दे दी, मुंह के ठोंठ के गर्मी से मक्खन अंदर चला जा रहा है गला शीतल हो रहा है और मेरे को ताकत मिल रहा है, जसदमा धीरे 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 करके हम मेरे पैरों को दाब रहे हैं सिर पर हाथ फिर रहे हैं, कोई आज इस मथुरापुरी में मेरे को ऐसे स्नेह करने वाला तो कोई है नहीं है, जाकर के बोलना और ये सब बोलना है, हर कृष्ण खूब अजोर नयन से रो रहे हैं और किससे बोल रहे हैं, कोई है वहाँ कोई नहीं है, किंतु कृष्ण मानते हैं कि मेरे सामने कोई आया हुआ है मेरे को ले जाने के लिए या मेरे बातों को संदेश देने के लिए। क्यों ये प्रतिमूर्ति देख रहे हैं बिंदा जस्ता में आनंद बाबा छटपट छटपट कर रहे रो रहे हैं और उस रोने के आवाज और प्रतिमूर्ति रूप धारण करके कृष्ण के निकट आकर के पहुंच रहे हैं। कृष्ण छटपट छटपट कर रहे हैं किंतु जा क्यों नहीं रहे हैं? कितने ऐसे भाग करके छोड़ करके चल दे फिर कभी लोग चल नहीं आए फिर क्या बोलते हैं कृष्ण ओहो आप तो मुझे कोई बोलते नहीं है कन्हैया भूखे हैं मैं इधर उधर रहा जबरदस्ती पकड़ कर खेलते हुए ले आए गोदी में उठा लिया जबरदस्ती मेरे को खिलाया बहन या मेरे शरीर के धूलों को मिट्टी को झाड़ा आप तो कोई मुझे स्नान नहीं कराते आप तो कोई मुझे प्यार से कपड़ों को बदलवाते नहीं अब तक देते नहीं आज मेरे प्रति किसी का तो इस मधुपुरी में नाम मधुपुरी है इसलिए केवल सजा हुआ वो मधु है किंतु इसमें कोई मधु को पी करके मतवाला हुआ नहीं अर्थात रसिक कोई नहीं है किसी के अंदर में सेवा भावना नहीं है सबके अंदर में अक्सर जगह में मत है। इस तरह से कृष्ण एक एक मिनट भूल नहीं पाते क्यों प्रीति के आकर्षण जिससे जिसका प्रीति है साधारण जड़ जगत में बोलते हैं कि कहीं दूर देश में भी है बोलते हैं क्योंकि वहां से भी यदि कोई याद करते हैं वो छटपट छटपट करते हैं क्यों वो आत्मा का प्रतिमूर्ति रूप धारण करके यहाँ तक पहुंचते और जहाँ साक्षात भगवान के लिए जीत पुकारते हैं तो भगवान जिनके लिए याद नहीं करते किंतु उनसे संबंध हो उनके लिए पुकार हो तब तो किंतु उनके लिए होता नहीं जगदानंद पंडित का संबंध है प्रभु से ना इसलिए वो चेष्टा कर रहे हैं कि मैं किसी देश आगे वृंदावन जाऊँ थोड़े दूर चलते हैं किंतु सब लोगों को देखते हैं किसी के अंदर महापुरुष युद्ध होकर नहीं मिलते गोर सुंदर के मुखारविंद दर्शन नहीं होता तो क्या करते हैं वो उनके रूप का चिंतन करते करते ध्यान करते करते वो लौट के आ जाते हैं कहाँ लौट के आते हैं पीछे 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 जिया से गए जिस रास्ता पकड़ कर गए क्यों उस रास्ता में जाते जाते जो गोर सुंदर की चिंतन किया और वो रास्ता ही उनको आगे और दिख रहा है उल्टा हो गए घूम गए वही रास्ता उनको अच्छा लग रहा है क्यों इस रास्ता से महाप्रभु जी वृंदावन के लिए चले थे और इसी रास्ता में मेरे को आनंद आया लौट के आए आकर के फिर दोबारा आया मैं कहाँ आ गया पूछा किधर आ गया फिर लौट के चल गया धीरे धीरे पैर को आगे बढ़ाना चाहते हैं हे रूपे कत दिने जाबो आमि वृंदावने ना जानी किभाबे दशा मोर वृक्ष तले बसि बसि काटी आमि अहर्निशि कबूमर अनिद्राया से घोर ऐसे चलते चलते मैं सोचता हूँ मैं कितने दिन में वृंदावन जाऊँगा असंभव बात है पैर आगे नहीं बढ़ता है किंतु मेरा दशा क्या होगा क्या करूँगा मैं वृंदावन मुझसे पैर नहीं आगे बढ़ता है कभी पैर के नीचे बैठ गया और बैठ करके मैं और निकली अर्थात दिन रात चौबीस घंटा चिंतन में व्यस्त हो गए और पैर नहीं उठता है और यानी पता है कबू कभी कभी नींद आती है खूब दूर से तो क्या होता है सपने बहुत दूर है गया सिंधु तट भविष्या देखी गोरार अपूर्वान तान गवाधर नाचे संगे भक्त बन नाचे रंगे गाय गीता अमृता बरसान सपन में देखा सो गया गौर निद्रा में सपन में देखा गौर सुंदर हिंदू तट अर्थात समुद्र किनारे नृत्य कर रहे हैं और वहाँ गदाधर पंडित छापने हैं और कौन है भक्त लोग सभी हैं और कीर्तन भी कर रहे हैं अमृत की वर्षा कर रहे हैं क्या अमृत की क्या वर्षा कर रहे हैं गौर सुंदर जब कीर्तन करते हैं और कीर्तन के साथ साथ में मुकुंद हमारे सायानंद प्रभु और सुल्तान प्रभु ठीक भाव के अनुरूप कौन से भाव में महाप्रभु है कैसे भाव में कीर्तन कर रहे हैं महामंत्र किंतु भावित एक व्यक्ति मां क्रोध में आदिष्ट है और उस समय महामंत्र कर रहे हैं, और एक व्यक्ति ब्रजमा में व्यवहित है उस समय कीर्तन कर रहे हैं, एक समाज बीरा में छटपटा में कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन के साथ साथ में समस्त शक्तियां बाहर में निकल आते हैं, उस समय आसपास के जो लोग हैं उसके द्वारा कृपा चित्त हो जाते हैं, अर्थात उस अमृत की वर्षा से सब लोग उस भाव में डूब जाते हैं। तो स्वर्गचंद प्रभु, रायमान प्रभु और भक्त लोग सुंदर सुंदर श्लोकों के भाव के अनुकूल कीर्तन कर वर्णन कर रहे हैं। नित्य विता अवसाने गोरा मोरे हाथ टाने भले तुम क्रोधे छाड़ गेले अमार की दोष वाला तब चित्त तव चित्त प्रबल तव चित्त चंचल ब्रज गेले अमा हेता फेले। जब नित्य चित्त प्राप्त हो गया और सुंदर मेरा हाथ पकड़ करके खींच रहे, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे क्रोध के कारण मुझे छोड़ के चला गया। क्यों महाराज जी बोलते हैं ना, सेवक दो प्रकार के हैं। महाराज जी बार उदाहरण देते हैं, क्या गोविंद प्रभु सेवा कर रहे हैं दिनदार। गोविंद प्रभु बोलते हैं ये क्यों पास में आता है स्वर्गानंद, और महाप्रभु को बुलाने के लिए आते हैं। महापुरुष दिनदार ये लोग आते हैं तो रोते रहते हैं, कभी महापुरुष शक्ति नहीं पाते और आज कुछ होते नहीं है, ये लोग नहीं आज भी अच्छे होता। और जब सुरदंग रायानंद नहीं आए महाप्रभु के लिए बीरा में छटपट छटपट कर रहे हैं, तो गोविंद प्रभु जी ये बात सुन लिया महाप्रभु जी ने, महाप्रभु जी अभी उनके बिना चलता नहीं। ऐसे जगदानंद पंडित ऐसे प्रेमी भक्त ऐसे भक्त है महाप्रभु को उनके दिखे बिना चलता नहीं, उनसे ही होता है राष्ट्रपति खटपति, जो कुछ बातें उनसे ही होता है और किसी से होता नहीं। और सब जगह महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम गौतम पंडित के निकट बड़े भक्त, सद्गुरु दयानंद के निकट भाव विभावित चित्त, किंतु अटपटी बात करना किससे नहीं करते, ऐसा कोई नहीं है, अर्थात मित्रवत व्यवहार संभव नहीं है। बता रहे हैं तुम क्रोध के मारे मेरे को छोड़कर गए, मेरा क्या दोष है, तुम्हारा चित्त चंचल है, अब ब्रज में तुम्हें चला गया मेरे को छोड़ के। आई सालिंगन करी तब बक्के बक्ख धोरी छाला मोई चित्तरा विचार, आओ जल्दी मैं तुमको अकबर में करता हूँ, आलिंगन करता हूँ, और मेरे अंदर में जो मेरे लिए जो तुम दुखी हो गए, मेरे चित्त में जो विचार है और दुख है वो दुख को मैं हल्का कर दूँ, आओ इधर आओ। अब मध्यान्न करिया पाक मोरे देह अन्न साक खून निवृत्ति हो कयामार, जाओ अब दोपहर हो गया, जाओ जल्दी जंगल से छाट पत्ता उठा के लाओ और तुम अन्न बना और मैं अभी भी खाता हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी है। माँ तुम सबकी यहाँ खाते हैं प्रसाद पाते भी क्या करते हैं, माँ भी पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता। एक समय क्या किया, सीता जी प्रसाद बनाया, तो प्रसाद बनाया बड़ा सुंदर विचित्र व्यंजन बनाया। इतने में रामचंद्र जी हनुमान जी को इशारा दिया, देख आज ना सीता जी ब्राह्मण भोजन कराएंगे, उनके मन में कुछ है। और क्यों, बोला भाई आए ना वनवास के और जंगलों में होकर के आज ब्राह्मण भोजन कराएंगे। बड़ी आज ठाट पाट से उन्होंने पूरा अवधपुरी के जितने ब्राह्मण पंडित सज्जन सबको बुलाया, तू जा क्या करूं ब्राह्मण भोजन कर, ब्राह्मण बन के जा और आज भोजन करना, नहीं तेरे को भोजन नहीं देगा, आज देगी पहले ब्राह्मणों को देगी, और तुझसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, जा और तिलक करके जनेऊ लगा के कलम पहन के बड़ा सुंदर ब्राह्मण बन के वेश बदल के गए। जाकर बोले माँ आज मैंने सुना अवधपुरी के सब ब्राह्मण भोजन होगा, मैं राजा रामचंद्र जी के निकट गया था, उन्होंने मेरे को आपके निकट भेजा है और बताया सबसे पहले मुझे भोजन कराना है, मैं सबसे बड़ा बारी पंडित ब्राह्मण हूँ, मेरे को भोजन करने के अवशिष्ट में आप किसी को भी भोजन कराएंगे। उन्होंने रामचंद्र जी को पूछा, बोले हैं ये पंडित जी ब्राह्मण के पहले भोजन होना चाहिए, इसके बाद किसकी भोजन होगा। अच्छा आसन बीत गया, पंगत लग गया, उनके पहले भोजन होगा, पहला सबसे ब्राह्मण की पूजा होता है, भोजन शुरू हो गया। सीता देवी जितना बनाया लाते हैं ये खाए चले जा रहे हैं, खाते 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 अवधपुरी में जितने घरों में जो मिश्रण न पकवान पूरी जितना है सब खा गए हैं। अब बाकी कुछ नहीं है। सीता देवी बोले, और वो बैठे हैं खाए जा रहे हैं, फिर ऊंचा नहीं कर रहे हैं, जितना देर खाए जा रहे हैं और ऊंचा नहीं कर रहे। सीता देवी हैरान हुई, कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा जितना है सब, और रानी और भी दशरथ जी 3-7 रानियां, एक से एक बड़े बड़े लक्ष्मियां सबने देखा। जनक महाराज आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया, कहाँ से ब्राह्मण आया, आज तक ऐसे ब्राह्मण मैंने देखा नहीं, और सब प्रसन्नता ही चले जा रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, फल मूल कंद है मिठाई पूड़ी पापवान जो मिले सो खा गया। इतने बड़ा विपत्ति हो गया, क्या करें। सीता देवी ब्राह्मण भोजन पूरा नहीं, एक ब्राह्मण भोजन नहीं हुआ, सब तो बैठे हैं, अब क्या होगा। सीता देवी क्या, सीता देवी बोले आज तो बड़ा ऐसे तो मैंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की, मैंने क्यों मन में अभिलाषा की मैं ब्राह्मणों को संतुष्ट करूंगी, एक ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हो रहे थे तो सारे ब्राह्मण की क्या गति हुई। इतने में रोने लग गई, रोना आ गया, अब क्या करूँ, इनकी तो पेट भरा नहीं, वो कहाँ चले जा रहा है। इतने में रामचंद्र जी ने इशारा कर लिया, क्या करो एक तुलसी दल ले आओ और चुपचाप पीछे जाके इसके सिर पर दे दो, बस वो खुश हो जाएंगे। क्यों, उनके सिर पर कौन है, रामचंद्र जी के चरण है, तो भगवान के चरणों में तुलसी देने से भगवान जितने संतुष्ट हो जाते हैं सारा विश्व देने से भी और संतुष्टि नहीं होता। और वो क्या कर रहे हैं, जो कुछ मिला है सब रामचंद्र जी को दे रहे हैं, अपने खा रहे हैं कि नहीं, फल खाते हैं हनुमान जी, अपने प्रभु को बिना भोग दिए कभी ग्रहण नहीं करते। अब मूर्ख लोग राम जी को भोग नहीं लगाते, हनुमान जी को भोग लगाएगा, मंगलवार को जाकर लड्डू मुंह में ठूस देगा, हनुमान जी खाओ भूखे मर रहे हो नंगे। इसे बताते हैं कि बिना राम का प्रसाद तो खाएंगे नहीं, तृप्त होंगे नहीं, जैसे तुलसी दे दिया चुपचाप जैसे उन्होंने दिखा ऊपर दिखा सब तो क्या है लिया उसको खा गए, बात आओ तो पेट भर गया, और जो सामने भी पड़ा था वो भी पड़ा है, बस अब जैसे भी क्या मन बड़ा संतुष्ट हो गया, भाई अब ब्राह्मण भोजन पूरा हो गया। इसलिए तो उस समय रामचंद्र जी बोले कि प्रभु की इच्छा के बिना अपनी स्वतंत्रता से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी अपना स्वतंत्रता को छोड़ करके अपना कार्य करेंगे तो वहाँ उसके लिए बड़ा भारी दयनीय स्थिति होगा, दुख का कारण बनेगा। तो जगदान्न पंडित जो माता मारुति महाराज मान पांड पंडित वो कैसे हैं, वो महापुरुष कभी निमंत्रण देते दे नहीं सकते, देते नहीं, सभी भक्त लोग निमंत्रण देते हैं, सार्वभौम पंडित निमंत्रण दिया दे करके भोग लगा करके सब प्रसादों को महापुरुष के सामने रख दी, अगर हाथ पकड़ कर बैठा दिया तो महापुरुष बोले अरे आपने बड़ा सुंदर भगवान का भोग लग दिया, उसमें से सन्यासी में थोड़ा सा पत्तल में करके तो सन्यासी को थाली में तो खाना नहीं जाना चाहिए, कोई भी धातु पात्र में सन्यासी साधु नहीं खाते तो पत्तल में खाते हैं, केले का पत्ता छोटा सा पात्र टुकड़ा करके मेरे को दे दो, क्यों धातु पवित्र माने जाते हैं, इसके उधर जितने भोग होते हैं पत्थर में होते हैं, सोना भी उसका ही केले का छिलके का होता है तो या कमल के पत्ते का होता है। तो अभी क्या किया, महापुरुष को ला करके बोले, महापुरुष बोले अच्छा, श्रवण पंडित जी ने हाथ पकड़ ली, बोली यहीं बैठिए, तो कैसे कैसे बैठेंगे, बोला अब जी तो कोई और भक्त लोग पाएंगे। तो महाप्रभु बोले अरे सन्यासी को प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए, और ये तो बड़ा भाग्य की बात है, तो बोले नहीं इसे थोड़ा सा दे दो, प्रसाद को सम्मान करना चाहिए, मैं सम्मान करता हूँ थोड़ा सा दे दो। क्या मंदिर के अंदर बैठ करके दिन में 56 बार भोजन करते हैं, एक एक बार में 56-56 मन 50-50 मन, उस समय तो कुछ बिगड़ता नहीं, अब हमारे यहाँ तो केवल एक मुट्ठी अन्न, वो भी कितना है? 40 किलो बालाम चावल, बासमती चावल, और बनाया बना करके पत्तलों में बड़े बड़े केले के पत्ती संगठिया केले का पत्ता आता जो बिछी गला वो बड़े बड़े पत्ते और सब भर दिया, उसके ऊपर घी डाल दिया एक टीम भर के, बड़ा हणिया उन्होंने तो तीन तीन हणिया भर के घी डाल दिया, तुलसी मंदिर दे दी, अदरक नींबू हैं बैगन दुनिया भर के सब्जियाँ बड़े बड़े हणिया में सजा रखा है भोग के लिए, सपन भोग पकड़ कर दरवाजा बंद कर दी। आप सोचता हूँ और महाप्रभु पाए चले जा रहे हैं, वो और भी बने हुए हैं जगन्नाथ जी के भोग का, सब ले जा रहे हैं, सब खिला रहे हैं और महाप्रभु सब खाए जा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि वहाँ भी इतना पा करके भी मेरे को संतुष्टि नहीं, तुम हमारे लिए जो जंगल से साग पत्ता ला करके उबाल करके बिना तेल का बिना घी का और वो भी समुद्र पानी, नमक नहीं है तो समुद्र पानी से ही नमक का काम होता है, और भिक्षा का चावल साधु लोग क्या होगा कि उसमें जो मैं संतुष्ट होता हूँ मेरा भूख मिटता है, ऐसे मैं कहीं संतुष्ट नहीं होता। ओ कल एक जन को मैं कथा सुन रहा था, मैं बोल रहा था साधु गए एक गांव में, साधु गए तो क्या किया सब लोग, लेकिन मेरे बड़ा साधु तो लिया है तो शिक्षकों को बोले देख बेटा ऐसा करना, बड़े बड़े घर वाले तो भिक्षा देना चाहते हैं लेकिन झोपड़पट्टी वाले सोचते हमारे घर में साधु नहीं आते, ऐसा करना गरीब दुखी के घर में जाना, जो रोटी बनेगा एक टुकड़ा ले आना है, एक टुकड़ा ले आना उससे हमारा हो जाएगा, बेचना हमारा हो जाएगा। तो क्या किया गए ने फिर देखा बेजर की रोटी मोटी मोटी और सूखे कांडे की कांडा की तरह, ये कोई खाया खाया नहीं जा सकता, ये कैसे खाएगा? वो क्या किया बड़े बड़े घरों में गए, बड़े बड़े घर में पूड़ी पकवान मालपुआ और बड़े बड़े ऐसी छाप देखा ना बड़े श्रद्धा सब दे दिया, सब छोली भर करके लाया गुरु जी के सामने रख दिया, गुरु जी बेटा तू क्या कर दी, अरे मैं भिक्षा करके लाया और लोगों की श्रद्धा बहुत देखा अच्छी से चीज मिला, गुरु जी ऐसे तो मैंने श्रद्धालु गांव दिखा नहीं, बड़ा अच्छा गांव है। अच्छा तो झुक और गरीबों के घर नहीं गया तो गया था, क्या मिला वहाँ तो देखो कांडा की तरह मिला है, क्या बिजर की रोटी क्या तंदूर की रोटी क्या क्या मिला है लो, तो गुरु जी ने उसमें छाट करके लेकर के गुरु जी खाने लग गए, शिष्य बिगड़ गया बहुत बिगड़ गया, गुरु जी आपका कोई होश नहीं ये सब खाते हैं इतना अच्छे अच्छे चीज नहीं खाते, तो गुरु जी ने क्या किया हाथ में ले ली दोनों को दोनों हाथ में और निचोड़े, तो क्या एक में से दूध निकले तो एक में से खून निकले, तो ये क्या हो गया गुरु जी ये क्या है आपके हाथ क्या खराब हो गया कट गया, तो नहीं बेटा देखो ये दूसरे का खून को ला करके राबड़ी और मालपुआ और बालूशाही और मोहनभोग बनाया, अब देखो खाट दिन रात मेहनत कर गाड़े कमाई उसने दो पैसा कमाया और उसने खा रहा है रोटी बनाया, देखो ये खाने से तंदुरुस्ती तुम्हारी बिगड़ेगा नहीं, कभी बीमार पड़ोगे नहीं, कभी तुम्हारा भजन में विपत्ति आएगी नहीं, उनके आचरण देख करके अब चलो सावधान हो गए। देखिए राबड़ी माला मालपुआ वो अंदर में जा करके वो यद दिलाएगा राबड़ी राबड़ी मालपुआ मालपुआ और सुख रोटी सात्विक निर्गुण वो क्या करेगा क्या याद दिलाएगा वो प्रभु की याद दिलाएगा, तो उस उपदेश को सुन करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। रामचंद्र जी के लिए भी ऐसी कथा आता है, बहुत विचार आता है कि दिया महाप्रभु सपना बताते हैं भक्त को ने देह पिछा पाना मोरे देह लाखला व्यंजन, भक्तों को बढ़िया से बढ़िया खिलाओ और मेरे लिए सूखे जंगल के साग पत्ता उगला हुआ या क्या दो व्यंजन अर्थात मिली मिक्स सब्जी जो कुछ मिल मिली जैसे इधर का उधर का सब मिला उगला करके जो कुछ मिला हमें दे दो, महापुरुष खुश कहते। एक दिन मुकुंद उसको निमंत्रण दिया महाप्रभु को और खूब अच्छे छप्पन भोग खिलाया। दूसरे दिन रघुनंदन उनके पुत्र रघुनंदन प्रभु ने निमंत्रण दिया, तो उस दिन उन्होंने क्या किया, अदरक का टुकड़ा उबला करके काट करके रख दिया, नमक के साथ नींबू के रस से करके, और थोड़ा दही रख दिया, और थोड़ा सा एक सब्जी बनाया साग पत्ता का, वो भी कौन सा, हाँ सिंगर का पत्ता भून कर रख दिया, नीम का पत्ता भून कर रख दिया, और बैगन और नीम देकर के बना के रख दिया है, ऐसी सब्जी बनाई। महाप्रभु आ करके बोलते हैं प्रसाद पा करके, आज रघुनंदन मुझे जानता है, अब बुला कर बोलते हैं मुकुंद रघुनंदन तुम्हारा पिता है कि तुम रघुनंदन के पिता है, कौन तुम्हारा है। तो मुकुंद दास बोलते हैं रघुनंदन मेरा पिता है, क्यों, अरे उससे तो मेरे अंदर में कृष्ण भक्ति आया, उनके हाथ से प्रभु खाते हैं, ठाकुर जी खा रहे हैं। श्रीकंडा में जब आप गए रघुनंदन जी के स्थान में देखा ना कैसे छोटा सा उनके गोपाल ठाकुर जी है, वो क्या कर रहे हैं, पिताजी गए कहाँ किसी काम से वैष्णव के संकीर्तन सम्मेलन में, रघुनंदन छोटा है 8 साल का, बोले बाबा बेटा रघुनंदन ठाकुर जी को स्नान करा करके मधुमती कुंड से मधुकुंड से स्नान कराना और उनको भोग लगा देना, और ठाकुर जी ब्रज के ठाकुर है, बिना लड्डू का उनका गुजारा नहीं होता, मीठा जरूर चाहिए, बिना मीठा के उनका मन नहीं भरता, तो जरूर एक उनको लड्डू भोग ले देना। तो आया भोग लगाया, बोले ओ ठाकुर तुम गज्जा है ना, तुम बिना मिठा के तो खाओगे नहीं, अच्छा लो लड्डू लो, ठाकुर ले ले रहे हैं, बोले अच्छा लड्डू अच्छा नहीं है, बड़ा प्यार से उनको बहुत इधर करके उधर करके समझाया, तो ठाकुर जी ने हाथ में लड्डू ले ली, लड्डू तो हाथ में ली, बोले खा लो, तो बोले तुमने लेने को बोला, मैंने लिया आप खाई ऐसे, बोले जो लिए तो खाई खाओ खा भी सकते हो, ठाकुर जी ने खाने लगे। इतने में क्या किया, पिताजी कहीं जा रहे हैं और ठाकुर जी हाथ में लड्डू पकड़े हैं मुंह में लगे हुए हैं, ऐसे ही रह गए, न अंदर जाए ना बाहर आए शर्म के मारे, बोले देखो ठाकुर जी भी चोर हो गए हैं, लड़की से चोरी करके खाने लगे, हम तो खाते नहीं, तो अरे बिगड़ा देखने जाएंगे तो हाथ में लड्डू रखे हुए हैं और ऐसे हाथ उठा हुआ रखा हुआ है, ऐसे खाए खाने जा रहे हैं। तो रघुनंदन प्रभु से प्रभु इतना संतुष्ट थे, तो महाप्रभु जी पूछ रहे रघुनंदन मुकुंद तुम्हारे पिता है कि तुम मुकुंद के मुकुंद तुम्हारे पिता है कि तुम मुकुंद के पिता हो, तो उन्होंने ऐसा बताया। तो महाप्रभु बता रहे हैं भाई स्वर्ग यात्रा निर्वाह के लिए कभी भी अपना अच्छा बुरा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से गुजारा करना है, नहीं तो दूसरे का जो खून पसीना का मेहनत का कमाई या बेईमानी चोरी छल चातुरी धंधा उसको खा करके हजम करना बहुत कठिन हो जाएगा, फिरने के लिए नियम नहीं है। छाड़िया जगदानंद मोर मन निरानंद भोजनादि लीन, जगदानंद तुम तो मुझे छोड़ करके चला गया, मैं तो निरानंद में पड़ गया, अब मुझे भोजन कौन देगा, मैं फिर कहीं भोजन करके संतुष्ट नहीं होता, क्यों सब लोग अपने अपने प्रतीक्षा के लिए महाप्रभु जी को निमंत्रण देते हैं भोजन कराते हैं, साधु संतों को भोजन कराते किस लिए, ओ खाकर चाहिए बाप हंडरा किया अच्छा किया, किंतु उनके खुशी के लिए कुछ करते हैं मन में भावना से लेकर के, मैं अपने खुशी अपने प्रतीक्षा के लिए नहीं, उन खुशी कैसे होगा, वो किस चीज से खुश होंगे, और यदि सुखी रोटी से खुश होते हैं तो मेरे को सुखी रोटी और टीका मूंग दाली करना है, इसलिए वो खुश होते हैं, एक मिर्ची से खुश है तो एक मिर्ची दूंगा, यदि ये हम कर नहीं सकते कहने सुखी रोटी राह की रोटी कैसे दे, ऐसे बोलते हैं किसको देगा नहीं सुखी रोटी, वो तो जी जरूर होना चाहिए, अच्छा और बिना सब्जी के कैसे होगा, गालियां देंगी वो नहीं खा सकते, तो बोलते नहीं वो अपने अपने प्रतिष्ठा को छोड़ करके महाप्रभु जी जब देखते हैं प्रसाद पाने जाते हैं जगदानंद के अलावा और किसी को नहीं देख सके ऐसा प्रसाद बनने वाला, देवदानंद महाप्रभु जी को मन जानते हैं, महाप्रभु जी कीर्तन करते हैं, नित्य करते हैं, उपवास करते हैं, तो दूसरे दिन पेट में गर्मी होने से आम होता है, कभी भूखे रहने से पेट पित्त गर्म होकर के या आम हो जाएगा, नहीं तो सर्दी जुकाम नजला हो जाएगा। दो कारण होता है, दो चीज बनते हैं, यह ऊपर होगा नहीं नीचे होगा। तो उस समय महाप्रभु जी के लिए क्या होता था, पुस्तपाता क्या है, पाक का पत्ता सूखा हुआ रख देते, उसको भिगो के उसका पानी देते सुबह सुबह, या तो कोई कड़वे की करेला या कोई कड़वे की देते, किंतु वो भी पुस्तपाता ठंडा भी करता है और पेट का आम दूर करता है, किंतु नीम और करेला गर्म होता है, फिर करेला का सूखा बनाने से ठंडा होता है, इस प्रकार से देते। और जगदानंद पंडित जुगाड़ करके इकट्ठे करके रख देते, दूसरे दिन एकादश के दूसरे दिन महाप्रभु के लिए जरूर सूखा बनाते। इस प्रकार से सब समय सेवा का परिपाटी आज बता रहे हैं कि भुजिया गेले तुम्हें दुखे ते पड़ीनु आमी जगा मोरे सर्वा दयाहीन, शीघ्र भजनी जोखिया आयस तुम्हें सुखी होइया मोरे देह साकान्न व्यंजन, तबे तो बाँचिब आमी ताते सुखी हबे तुम्हें क्रोधे मोरे ना छाड़ कखन। देखो प्रीतिका रीति कैसा है, जैसे भगवान के भक्त तड़पते हैं ना, भगवान भी भक्तों के लिए ऐसी तड़पते हैं। प्रीति विपरीत प्रीति अर्थात अब उल्टा उत्तर आ रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ सुबह सुबह तुम पूर्व दिशा में बैठ करके मंत्र जप करा तो पूर्व पूर्व महाराज ने प्रार्थना की, शाम को उत्तर दिशा में बैठे उत्तर आ जाएगा तुम्हारे पास, जवाब आ जाएगा क्या क्या तुमने सुबह सुबह कामना वासना किया और प्रार्थना किया। उत्तर दिशा में उत्तर आएगा मतलब उत्तर दिशा में है कौन, उत्तर दिशा में हमारे परंपरा के सभी लोग हैं, अर्थात उत्तर में समस्त हमारे ऋषि महर्ष सभी है महाजन लोग उत्तर देंगे। जैसे अभी महाप्रभु जी क्या बोल रहे हैं, जगदानंद शीघ्र तुम जाओ प्रज में और जाकर के और जोत के जल्दी आओ और आने से मैं सुखी हूँ।